आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन से कल लखनऊ सहारनपुर समेत चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। वाराणसी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में वर्ष भर तक चलने वाले स्मरण उत्सव का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कहा, भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था वंदे मातरम। और भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के कई जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मनाया शताब्दी वर्ष का उत्सव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। वो एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस गए। रास्ते में काशीवासियों ने जगह जगह उनका अभिवादन किया। बरेका पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री कल बनारस रेलवे स्टेशन से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत की आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री कल बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा वह लखनऊ सहारनपुर फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और मौजूदा समय में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। वहीं लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। इस ट्रेन से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। मनीष सिंह के साथ प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने वंदे मातरम 150.in पोर्टल भी जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प है।
वंदे मातरम का मूल भाव है भारत, माँ भारती, भारत की शाश्वत संकल्पना। वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को घड़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, भारत ने ये सब कुछ देखा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत ने लोगों को मातृभूमि की भावना से जोड़ा और भारत के शाश्वत सार को प्रतिबिंबित किया।
राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सब की सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। और हम सब आभारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में हर भारतवासी के लिए कहा कि आप भारत की भक्ति और शक्ति के सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है वंदे मातरम।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में सामूहिक वंदे मातरम गायन और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बरेली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था।
वंदे मातरम हमेशा से गाया जाता रहा है और वंदे मातरम जो लम शब्द आता है तो कहीं न कहीं अंदर से देशभक्ति ऊर्जा पैदा होती है और वंदे मातरम वही गीत है जिसको गाते हुए कहते हुए इस देश को आजाद कराने के न जाने कितने क्रांतिकारी फंदी फांसी के फंदे पर झूम करके अपने प्राणों को निछावर कर दिए।
आगरा में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर में भी वंदे मातरम गायन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने और राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य पशुओं को हटाने के लिए आज कई दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई में हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त तरीके से बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हॉकी के भारत के गौरवशाली इतिहास और वैश्विक मंच पर उसके प्रभुत्व का स्मरण किया है। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने हॉकी खिलाड़ियों के खेल कौशल की प्रशंसा की। हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश के कई जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश हॉकी ने इस अवसर पर शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया। कुशीनगर में हॉकी इंडिया के तत्वाधान में मैत्री मैच का आयोजन हुआ। लखनऊ के रहने वाले पूर्व हॉकी ओलंपियन सैयद अली ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपनी हॉकी से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया।
ये हमारे लिए और हॉकी खिलाड़ियों की बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग ये 100 वर्ष मना रहे हैं हॉकी के और हम 8-9 साल इस 100 साल में हम भारतीय टीम का एक हिस्सा रहे हैं, इसका भी हमें गर्व है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को बचत उत्सव शुरू किया था जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कमी से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। इस कड़ी में आज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र में जीएसटी सुधारों से नागरिकों को किस तरह लाभ मिल रहा है।
नए जीएसटी सुधारों के तहत टैक्स कटौती से पर्यटन क्षेत्र को काफी राहत मिली है। 7,500 रुपए प्रति रात्रि से कम किराए वाले होटलों में ठहरने पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आवास अधिक सुलभ हो गए हैं। करों की दर में इस कमी से मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए होटल सस्ते हो गए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत के प्रति आकर्षण को बढ़ावा मिल रहा है। होटल और होम स्टे में भी निवेश प्रोत्साहित हुआ है, रोजगार सृजन हुआ है और स्थानीय बुनियादी ढांचों में सुधार आ रहा है। दूसरी ओर 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाले बसों पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन लागत में कमी आई है। जीएसटी सुधार भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक रणनीतिक पहल है। रिशु जायसवाल के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों को प्रदेश भर में वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक भारतीय उपचार पद्धतियों के माध्यम से आध्यात्म और पर्यटन को एक सूत्र में बांधना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन से कल लखनऊ, सहारनपुर समेत 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। वाराणसी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले स्मरण उत्सव का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कहा, भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था वंदे मातरम। और भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के कई जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मनाया शताब्दी वर्ष का उत्सव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।